ओम शांति, ओम शांति। आप सबको पता तो पड़ ही गया होगा कि हमारी अति प्यारी अति स्नेही सारे यज्ञ रक्षक कही आदि रत्न दादी रतन मोहिनी जी ने कल यानी आज सुबह 1:20 पर अहमदाबाद में अपना यह देह त्याग किया और बाबा की गोद में समा गई। अब आगे का समाचार क्या है वो फिर लास्ट में आप सबको बताएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी को तो लाया गया है शांतिवन में। अभी का 7 तक बॉडी पहुंच जाएगी और वहां ही कॉन्फ्रेंस हॉल में अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी और कल यहां पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में ले आएंगे, फिर आगे का आपको बाद में बताएंगे। ओम शांति। ऐसी दिवंगत आत्मा को हम सब लास्ट में श्रद्धांजलि भी देंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को 2 मुख्य पाठ पढ़ाए। एक है संगम युग का महत्व क्या है। संगम युग को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, पर ये युग केवल पुरुषार्थ का युग नहीं है। यहां भी हमें बहुत प्रारब्ध मिलती है, इसलिए 21 जन्म गाए हुए हैं। एक संगम युग का भी जीवन है, जन्म है। इसलिए हम कितने न पद्मा पदम भाग्यशाली है, हम सब पुरुषोत्तम संगम युग पर है, जबकि ये दुनिया बदल रही है। हम देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी सब परिवर्तन होता जा रहा है, समय समाप्ति की ओर भी जा रहा है। बस इंतजार इतना ही है कि हम सब जल्दी संपूर्ण बन जाए। और दूसरी बात बाबा ने अभी यही याद दिलाई है कि देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बाबा के सिवाय और कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि सब मनुष्य आत्मा इस समय देह अभिमानी है। तो जो स्वयं देह अभिमानी है वो देही अभिमानी कैसे बनाएगा? तो कौन बना सकता है देही अभिमानी जो सदा ही देही अभिमानी है? और वो तो केवल एक शिव बाबा ही है जो सदा ही देही अभिमानी है। इसलिए बाबा आकर सबसे पहला पाठ आत्मा का पाठ ही पढ़ाते हैं कि तुम ये देह नहीं हो, आत्मा हो। तो आप देखेंगे शुरू से जैसे यज्ञ की स्थापना हुई बाबा ने आत्मा का पाठ ही पढ़ाया। और अंत तक यही पाठ बाबा पढ़ा रहे हैं, अंत में भी यही काम आएगा। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 8/4/2025 है। मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग ये संगम युग है, इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो, इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ, सच्चा कुंभ मेला बाबा कहते हैं ये संगम युग है, जबकि तुम आत्मा नदियां हो और तुम सागर से मिलती हो। तो नदियां है सागर की बच्चियां, हाँ ऐसे ही कहेंगे ना, तो सागर के बच्चे है नदियां, तो तुम नदियां भी सागर से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न है, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? वो पाठ मनुष्य नहीं पढ़ा सकते, केवल बाप ही पढ़ा सकते हैं, वो कौन सा पाठ है? उत्तर, देही अभिमानी बनने का पाठ। ये एक बाप ही पढ़ाते हैं, ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। तो पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, बाबा ने आते ही सबसे पहले ओम की ध्वनि निकाली, ओम मैं आत्मा हूं। तो सबसे पहला पाठ बाबा ने आत्मा का पढ़ाया, तो पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पाठ बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है, ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, बनाया ही नहीं है किसी ने, इसीलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है, बनाया ही नहीं है। सर्कल होता है, साइकिल होता है, सर्कल उसमें आदि अंत नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे चेंज आती जाती है, और जब अति तक वो चेंज आ गई फिर एकदम ऊपर तक ऊपर जाती है, तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, माना अंत से फिर आदि, फिर खत्म नहीं होता है। तो इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है, लेकिन जहां महान परिवर्तन आता है वहां कहेंगे अंत और फिर आदि। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत तो अनेक बार सुना होगा, साजन सजनियों से कहते हैं गीत में ना, साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन कहा जाता है, तो बाबा कहते हैं साजन कब कहा जाता है शिव बाबा को, वैसे तो पोपिता है, लेकिन उनको साजन कब कहा जाता है, जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वो बाप है, परम धाम में आत्मा है परमात्मा है तो वो बाप है। तो और तुम बच्चे हो, तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हो, ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम को याद करती है ना, सजनियां साजन को याद करती है, सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम, सब आत्माएं रूपी आशिकों का माशूक एक ही परमात्मा है। वो बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्या अब जागो नवयुग आया है, गीत में नवयुग आया सजनिया जाग, अब जागो नवयुग आता है, अब जागो नया युग आता है। नया अर्थात किसको कहेंगे, नया नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग, अब बाप आए हैं तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह न सके, हाँ कोई किसको ऐसे कहेगा क्या, मैं तुमको स्वर्गवासी बनाने आया हूँ। लोग कहेंगे पागल हो गया है क्या, वैसे भी जब मरते हैं तब कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, ऐसे थोड़ी मैं तुमको स्वर्गवासी बनाने आया हूँ ना मारने आया हूँ, ऐसे तो कोई किसको नहीं कहेगा। लेकिन भगवान तो कह सकते हैं ना, क्योंकि मरे बिना तो न स्वर्ग मिलता है न भगवान मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई मनुष्य तो कह न सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नर्क को बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि वो समझते सदा ही दुख है इस संसार में, कभी ये संसार स्वर्ग था फिर नर्क बना, ये तो वो नहीं कहेंगे। सन्यासी तो स्वर्ग और नर्क को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है जो आदि शंकराचार्य ने स्थापन किया, उसके पहले तो कोई सन्यासी नहीं थे। वो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, सन्यास धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नर्कवासी है वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तो नर्कवासी नहीं हो लेकिन फिर स्वर्गवासी भी नहीं है, तो कौन से युग के वासी हम? न हम स्वर्ग सतयुग के वासी है न अभी कलयुग के वासी है, तो अभी कौन से युग के वासी है? कौन से युग के? संगम युग वासी है। अभी तुम नर्कवासी भी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच में, नर्क और स्वर्ग के बीच में संगम होता है। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। संगम युग पर हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में ये है सर्वोत्तम। संगम युग है सच्चा कुंभ का मेला, सर्वोत्तम कुंभ का मेला, इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं, तो क्या कहा जाता है? जब एक बाप के बच्चे हैं तो क्या है हम सब? इसको ब्रदरहुड कहा जाता है, भाई भाई है, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं। वसुधैव कुटुम्बकम कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ब्रदरहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई है। इसलिए जो मीटिंग में जो इस साल का थीम पास हुआ है, ईयर ऑफ यूनिटी एंड ट्रस्ट, विश्वास और एकता, इसका ये साल मनाया जाएगा। एक दो में कैसे विश्वास रखें और कैसे एकता में चले, तो एकता और विश्वास का ये लक्ष्य है, तो इसीलिए उसी टॉपिक पर ये सारा साल मनाएंगे। तो बाबा कहते हैं सभी आत्माएं आपस में भाई भाई है, कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई है ना, है ना, आत्माएं आत्मा के रूप से, चाहे किसी भी धर्म में वो आत्मा हो, पर है तो शिव बाबा की संतान तो भाई भाई है। ये ज्ञान तुमको अभी मिला है, बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो, अभी तुम सम्मुख सुनते हो। वो तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं सभी आत्माओं का बाप एक है, उस एक को याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, इस हिसाब से भाई भाई है। मेल और फीमेल दोनों आत्मा है, शरीर नहीं है तो आत्मा केवल है, तो आत्मा भाई भाई है। फिर भाई बहन बनते हैं, सृष्टि पर आते हैं तो फिर भाई बहन कहलाते हैं, ब्रह्मा की मुख से पैदा होते हैं तो ब्रह्मा पिता हो गया, तो भाई बहन हो गए। फिर क्या बनते हैं? पहले भाई भाई है, फिर भाई बहन बनते हैं, फिर उसके बाद फिर बाबा कहते हैं स्त्री पुरुष कहा जाता है। शादी होती है तो फिर वो भाई बहन तो नहीं कहलाएंगे, फिर वो पति पत्नी कहलाते हैं, फिर वो स्त्री पुरुष कहलाता है कहलाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल। ऐसे नहीं कहते, कहा जाता है कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं कहते। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर में मिलती रहती है, तो बहुत काल वो अलग रहे नदियां सागर से, ये तो नहीं कहेंगे, वो तो मिलती रहती है, सागर में पानी जाता रहता है जल नदियों का। तो ये नदियों और सागर रहे बहुकाल अलग, ये नहीं कहेंगे। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर में मिली रहती है, मिलती रहती है, ये भी बच्चे जानते हैं। नदी सागर की बच्ची है और ब्रह्मपुत्रा है, ये पुत्रा है, ये बेटा है, पुत्र पुत्रा, पुत्री बेटी है, तो ब्रह्मपुत्रा पुत्र भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र तो वो बेटा है, क्योंकि सबसे बड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र, तो इसलिए वो बेटा हो गया ना, ब्रह्मा बेटा है शिव बाबा का। तो बाकी सब नदियां हैं, तो बाबा कहते ये भी बच्चे जानते हैं, नदी सागर की बच्ची है। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर में मिलती रहती है, तो नदी सागर की बच्ची है, सागर से ही पानी निकलता है। नदियां कैसे बनती है? सागर से ही पानी निकलता है, बादलों द्वारा, फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती है। तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां, सब नदियां सब है सागर के बच्चे और बच्चियां। बहुतों को ये भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है। बाबा ने एक बार कहा था, एक बहन से पूछा, ये आकाश से पानी कैसे आता है? तो कहा कि इंद्रदेव भेजते, इंद्रदेव। तो इंद्रदेव कौन सा है जो पानी भेजते, क्योंकि इंद्रदेव को कहते हैं ना जल देवता, तो इसीलिए इंद्रदेव भेजते हैं। तो इंद्रदेव कैसे भेजता है, कहाँ से लाता है पानी? जाता तो सागर से ही है। तो बाबा कहते हैं तो पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है, तो ये भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है, ये भी समझाया जाता है। तुम सभी आत्माएं हो और बाप एक है, आत्मा भी निराकार है, फिर जब साकार में आती है, आत्मा जब साकार में आती है तो फिर पुनर्जन्म लेती है। जब तक परम धाम में है तब तक पुनर्जन्म तो नहीं है ना, जब साकार में आती है तो फिर पुनर्जन्म लेती है। बाप भी जब साकार में आए तब आकर के मिले, परम धाम में तो आत्मा तो है ही बाबा के साथ, वहां मिलने न मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है, पर यहाँ जब आए बाबा तब आकर के साकार में बच्चों से मिले। बाप का मिलना एक ही बार होता है सारे कल्प में, इस समय आकर सबसे मिले हैं, ये भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ न सके, संगम युग पर श्री कृष्ण तो आ न सके, वो तो सतयुग में आते हैं, तो अभी तो श्री कृष्ण नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ न सके, ये कैसे, वो कैसे गाली खाएंगे? सोचने की बात है, ब्रह्मा बाबा ने तो कितनी गालियां खाई। बाबा कहते वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो, ब्राह्मण फंस गया बाबा, शिव बाबा ने प्रवेशता की लेकिन कोई समझ नहीं सका तो गालियां खाई। अब श्री कृष्ण तो गालियां नहीं खाएगा ना, तो बाबा कहते वो कैसे गाली खाएंगे? ये तुम जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है, वही ब्रह्मा की आत्मा, वही श्री कृष्ण की आत्मा है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का, तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। बाबा का ज्ञान जब तक नहीं था तो अपने को शरीर समझते थे, शरीर समझ कर ही चलते रहे, तो शरीर समझ कर इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। आत्मा है वो बताते हैं, लेकिन देही अभिमानी बन जाओ आत्मा, तुम आत्मा देह से न्यारी हो, बाबा कहते ऐसे नहीं समझाते हम। तो साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हम, तुम बच्चे हो, तुमको बेहद का के बाप से वसा मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, अभी ये नाटक पूरा होता है, ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है। हाँ शिव बाबा ने ऐसा ड्रामा क्यों बनाया, कई बाबा को दोष देते हैं, बाबा कहते मैंने ड्रामा बनाया ही नहीं है, तो बना बनाया, ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, तो तुम बोलो, हाँ जवाब दो, अगर वो पूछते हैं तो जब तुम बोलो ये तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता है। हाँ किसने बनाया, फिर ये भी प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि आदि अंत है ही नहीं, किसने बनाया ही नहीं है, तो किसने बनाया, कब बनाया, फिर आएगा कब बनाया, फिर कब खत्म होगा, बाबा कहते ये प्रश्न तो उठ ही नहीं सकते। तो तुम बोलो ये तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता, पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है, बस ये होता है, नया है फिर पुराना बनता है, फिर बाबा आकर उसको नया बनाते हैं, बस नया और पुराना होता है। ये पाठ तुम बच्चों को पक्का है, तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है। हा? पुरानी कब बनती नहीं, हो जाती है पुरानी, कोई वो बनती नहीं है पुरानी, कोई बनाता नहीं है पुरानी दुनिया, वो बन जाती है, बनाती तो नया ही है। फिर पुरानी कब होती है, ये भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति नहीं बैठता। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं, है ना, सभी तैयार ले जाने के लिए बाबा आए हैं। हाँ बाबा को हम कहते हैं जी बाबा हम तैयार हैं, हम आपके साथ चलेंगे जब भी आप ले जाएं। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं, बाप गाइड भी है ना, तुम सब पंडे हो, पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं, अब वो है जिस्मानी पंडे, ये पांडव शब्द भी पंडे से आया है, तो पंडा माना कौन, जो गाइड बन के ले जाता यात्रा पर, वो है जिस्मानी पंडे, और तुम हो रूहानी पंडे, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, ये पांडव गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त, बहुत बड़ी गवर्नमेंट है ये, लेकिन है गुप्त। पांडव कौरव यादव क्या करत भय, इस समय की बात है, गीता में आता है पहला ही अध्याय, पांडव कौरव यादव क्या करत भय, ये इस समय की बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है, अनेक धर्म दुनिया भी तमो प्रधान है, वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है, सारा पुराना हो गया ये वैरायटी धर्मों का झाड़। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला फाउंडेशन, जड़ों से जो पहला निकलता है, पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सत्युग में थोड़े होते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं, ये किसको भी पता नहीं। हाँ कैसे सत्युग में थोड़े होते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं, अभी इतनी वृद्धि हो गई है फिर खत्म होना है फिर थोड़े होने हैं, बाबा कहते ये किसी को पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबर वार है, स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होता है, अच्छी धारणा करता है तो और कराने का शौक होता है, जो अच्छी धारणा करते हैं फिर उनको दूसरों को धारण कराने का भी शौक होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं और कोई मीडियम, एकदम अच्छी रीति नहीं धारण करते, कुछ बातें नहीं समझ में आती है, कोई फिर थर्ड ग्रेड, कोई फिर फोर्थ, और फोर्थ वाले कैसे होंगे, उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाले चाहिए, पहले बताओ कि दो बाप है, पहले बताओ दो बाप है, एक बेहद का पारलौकिक बाप और दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था, याद है ना, भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना है, इसको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है, एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। तो अपने युग से पहले शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है। तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उनको न सुनो। कौन सी चीजें हमें कनिष्ठ बनाती है, बाबा कहते हैं वो न सुनो न देखो न बोलो। तो इसीलिए तुम, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, एक बाप से ही सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, व्यभिचारी बातें नहीं सुनो। रावण का समाचार बाबा कहते नहीं सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो। और कोई से जो सुनेंगे वो है झूठ, हाँ झूठ ही है ना। देखो कई बार चलो व्हाट्सएप पर आता है या वो आता है न्यूज में, लेकिन फेक न्यूज होता है, कहेंगे फेक फेक फेक, कितना झूठ ही झूठ है। तो दुनिया में तो झूठ ही झूठ है। तो बाबा कहते हैं अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, जो एक सत्य ज्ञान है वो ही सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वो है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं, ईवल बातें तुम सुनते सुनते क्या बन गए, ईवल बातें सुनते सुनते तुम कनिष्ठ बन गए हो। सोजरा है ब्रह्मा का दिन और अंधियारा है ब्रह्मा की रात, ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबर वार तो हर बात में होते ही है, डॉक्टर कोई 10-20 हजार एक ऑपरेशन के लेते हैं, कोई को खाने के लिए भी नहीं। कोई तो डॉक्टर्स इतना कमाते हैं, सर्जन तो बहुत कमाते हैं ऑपरेशन करते हैं तो, और कोई डॉक्टर भले पढ़ा लिखा है लेकिन कोई नहीं आते उनके पास ग्राहक। तो बाबा कहते हैं कोई को तो खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं, तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं, तो सारा मदार पढ़ाई पर है। तो अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे, अभी की पढ़ाई पर निर्भर है भविष्य का पद ना। तो अब हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे, जो जन्म जन्मांतर बनेंगे वही फिर बाबा कहते कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए, विष पीना तो एकदम छोड़ देना चाहिए। अपवित्र बनना, विकारी बनना बाबा कहते एकदम छोड़ देना होता है। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा ना, सत्युग में तो नहीं कहेंगे विष पीना छोड़ो, वहां तो विष है ही नहीं। सत्युग में नहीं कहा जाएगा भूत पलीति कपड़ धोए, ये ग्रंथ साहिब में आता है, गुरु नानक ने कहा अब ये समय सब भूत पलीति है, तो भूत पलीति को फिर कपड़ धोए, माना भगवान आकर वो धोते हैं। इस समय सब की चोली सड़ी हुई है, ये चोला भी है जो सड़ा हुआ है। तमो प्रधान है ना, ये भी समझाने की बातें है ना, तमो प्रधान है फिर सतो प्रधान, चोला कैसे मिलता है सत्युग में, बाबा कहते ये समझाने की बातें है ना। सबसे पुराना चोला किसका है, सबसे पुराना चोला किसका है, किसका है, वो कहता मेरा है। हम सबका है, क्योंकि जो ब्राह्मण बनते हैं ना वो ब्राह्मण का सबसे पुराना चोला है, क्योंकि 84वां चोला है। भले जवान होंगे इस जन्म में लेकिन सब वानप्रस्थी है, इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे पुराना चोला किसका है, हमारा। हाँ? हमारा माना हम सबका। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं, आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है, शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी ना। अब शरीर जर्जरी भूत हो गया, ना कुछ सुनाई देता ना दिखाई देता है, ना बोल सकते हैं, जैसे कई ऐसे है जिनको एकदम वेजिटेबल बनते हैं, वेजिटेबल बन जाते हैं, वेजिटेबल चल पड़े जिंदा है, श्वास चल रहा है बस, बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे सब्जी है, जिंदा है ना, लेकिन फिर वो भी कैसे पड़ी पड़ी, आखिर तो सड़ भी जाती है। तो ऐसे है अभी तक है जिंदा, लेकिन मरे हुए भी नहीं है, जिंदा भी जैसे नहीं है, वेजिटेबल कहते उसको। तो बाबा कहते हैं सबका सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है ना, ये भी समझाने की बात है ना, सबसे पुराना चोला किसका है, हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं, आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता, शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर में आत्मा है, वो शरीर बदलेगी या दूसरा शरीर लेगी, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, ये भी ड्रामा बना बनाया, कितना भी जर्जरी भूत तो आखिर तो मृत्यु तो आनी है, सबसे निश्चित चीज है वो तो मृत्यु ही है, चाहे कितना भी वो आयु जिए आखिर तो मरना ही है। तो बाबा कहते हैं शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, ये भी ड्रामा बना हुआ है, सबका पार्ट है। आत्मा है अविनाशी, आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ, आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ, देही अभिमानी बनना पड़े, मनुष्य सब दे अभिमानी है, आधा कल्प है दे अभिमानी और आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सतयुग में भी सब देही अभिमानी है, तो बाबा कहते देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को कौन सा टाइटल मिला है, बाबा कौन सा टाइटल देते हैं सतयुगी देवताओं को, क्योंकि वो देही अभिमानी है, तो हाँ कौन सा टाइटल, कौन सा, वो जीत है, रोते नहीं है किसी के शरीर छोड़ने पर। देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहां समझते हैं हम आत्मा हैं, अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोह जीत राजा की भी कथा है ना, बाप समझाते हैं देवी देवताएं सब मोह जीत होते हैं, मोह जीत की कथा माना देवताओं की कथा, देवताएं सब मोह जीत होते हैं, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, तो बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है, तुम भी चक्र लगाकर अब फिर आए मिले हो, बाबा से मिले हो पूरा चक्र लगाकर, बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है, तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए मिले हो, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, द्वापर से देवताओं की आत्माएं अब हिंदू कहलाया फिर कन्वर्ट हो गए और धर्मों में, वो भी आकर के मिलेंगे, है ना, मिलते हैं डबल विदेशी, वो भले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए लेकिन बाबा के बच्चे कहलाते हैं, आदि भारतवासी अपने को कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे, धर्म ही बदल गया ना, पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे, कितने जन्म उस धर्म में रहे, फिर आकर के अंत में बाबा के बच्चे बने, दो तीन जन्म भी ले सकते हैं। हाँ, कई तो बाबा ने, एक विदेशी बहन ने बाबा से पूछा था, बाबा हम क्यों भारत में जन्म नहीं लिया, क्यों हम भारतवासी नहीं कहलाए, हमने उस धर्म में जन्म क्यों लिया, तो बाबा ने तो बहुत प्यार से सुनाया कि बच्चे उस जन्म में तुमने उस देश में जन्म लिया ताकि उस देश की आत्माओं की सेवा करने लिए, नहीं तो आपकी भाषा कौन जाने उस देश की। इसीलिए आपको निमित्त बनाया उस देश की सेवा करने लिए। फिर पूछा, बाबा एक ही जन्म उस देश में जन्म लिया या बहुत जन्म लिए उस देश में? बाबा ने कहा नहीं, एक ही जन्म। बाबा ने तो इतना प्यार से कहा, एक ही जन्म उस देश में जन्म लिया है क्योंकि उस तरह उस धर्म की सेवा कर सको। तो बाप कहते हैं, तो पता नहीं कितने समय उस धर्म में रहे हैं, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है, से बहुत है हाँ, जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं फिर यहाँ आता है। ये तो है डिटेल की बातें। अब और धर्म में कन्वर्ट हो गए फिर बाबा के बच्चे बनते हैं, तो ये डिटेल की बातें हैं। बाप कहते हैं इतनी बातें याद न कर सको, नई बातें ये याद कर सको तो क्या करो? तो बाबा कहते अच्छा, अपने को बाप का बच्चा तो समझो, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ ये तो समझो, और कोई डिटेल बातें ना समझ सको तो। ये भी है डिटेल की बातें। बाप कहते इतनी बातें याद न कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद ही नहीं करते हैं। माया इसमें भुलाती है, क्यों याद नहीं करते? माया भुला देती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो, वो ड्रामा में पार्ट है। हाँ, पहले बाबा के थे फिर माया के मुरीद बने फिर अब ईश्वर के बनते हैं, ये ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो, अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह नहीं रखो। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि हाँ क्यों बेहद का वैराग्य आता है? क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे फिर जब अशरीरी होकर अभी वापस जाना है, अशरीरी आए थे फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब ये दुनिया ही खत्म होनी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लिए बाप कहते हैं। कैसे बनेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान? तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। अब ये श्री कृष्ण तो कह न सके कि माँ में कम याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, श्री कृष्ण को याद करने से नहीं बनेंगे, केवल शिव बाबा को याद करने से ही बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये श्री कृष्ण तो कह न सके कि माँ में कम याद करो, श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है, माँ तो वैसे भी कहने की दरकार नहीं। बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो तो अब मुझे याद करो, मैं ये युक्ति बताता हूँ पावन बनने की। कौन सी युक्ति शिव बाबा बताते पावन बनने की? बाबा की याद, बस यही युक्ति है। कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ, जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है, मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो ये संगम युग है, ये है संगम युग, क्या है? पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में पड़े हैं, इस समय सब तमो प्रधान है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, अब भक्ति मार्ग भी खत्म होता है, सब खत्म होता है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। अभी ज्ञान लेते हैं फिर ज्ञान का की प्रालब्ध भोगेंगे, भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, ये सब भक्ति के अक्षर है। पुकारना भगवान को ये भक्ति के अक्षर है। इसमें कोई आवाज तो नहीं करना है। ज्ञान मार्ग में जब हम आते हैं इसमें बाबा शिव बाबा हे बाबा ऐसे तो नहीं कहते ना, कोई ऐसे नहीं कहते। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़ी करते हैं। उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर, तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है ये कोई जानते नहीं। क्या है भगवान की भाषा बताएं? भगवान की भाषा क्या है बाबा? भगवान की भाषा क्या है? हाँ, साइलेंस। परमधाम में तो है ही साइलेंस ना, तो भगवान की भाषा साइलेंस है। फिर शरीर में आते हैं तो टॉकी बनते हैं, लेकिन कौन सी भाषा बोलते हैं? जो रथ की भाषा है। अब रथ की भाषा ही बाबा बोलते हैं। बाबा ने कहा था ना, जो रथ की भाषा है वही मैं बोलूंगा। बाबा की तो अपनी भाषा तो है नहीं, आत्मा की भी अपनी भाषा तो नहीं है, साइलेंस है। परंतु जिस धर्म में पैदा होते हैं, जिस कुल में या जिस घर में, फिर वो भाषा सीख लेते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान की भाषा क्या है ये कोई जानते नहीं है। पूछ के तो देखो किसी को भगवान की भाषा क्या है। अब ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे। अब स्पैनिश आते थे बाबा के सामने, तो अब वो व्यक्ति जो बाबा का बच्चा, वो बाबा उनको वरदान दे रहे हैं, वो तो हिंदी समझता नहीं, परंतु जो ट्रांसलेट करने वाली है वो इंग्लिश समझती, वो भी हिंदी नहीं समझती है। तो फिर दूसरा होगा जो हिंदी से इंग्लिश करे, फिर वो इंग्लिश में सुने और इंग्लिश वाली फिर ट्रांसलेट करे स्पैनिश भाषा में, पोर्चुगीज भाषा में, डच भाषा में, जो उसकी भाषा हो। तो देखो तीन भाषाओं में हो गया, फिर ट्रांसलेशन हो गया। हाँ, तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से डच। तो बाबा कहते हैं तो बाबा की तो कोई भाषा नहीं है। तो बाबा को तो फिर जिसके तन में आते वही भाषा बोलनी है। कई कहते भगवान है ना, वो तो सब भाषाएं जानता होगा। तो एक बार किसी ने कहा, पूछा कि जब हम बाबा से बात करते हैं, मानो हमको हिंदी तो आती नहीं, तो मैं बाबा से बात करूंगी तो स्पैनिश भाषा बात करूंगी, स्पैनिश में बोलूंगी, पोर्चुगीज में बोलूंगी, इटालियन में बोलूंगी, तो बाबा मेरी भाषा समझेंगे? तो हमने कहा क्यों नहीं समझेंगे, तो वो तो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म में तो सब समझेंगे, लेकिन जब स्थूल में आते हैं तो फिर जिस रथ में आते हैं उसकी भाषा बोलते हैं। इसीलिए फिर बाबा को ट्रांसलेट करके देना पड़ता था, क्योंकि वो जब बाबा से बात करता है तो फिर जो ट्रांसलेटर है वो फिर उसकी जो भाषा है से फिर हिंदी में बाबा को सुनाना पड़ता था। तो देखो ये भाषा की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाबा हमारे मन की भाषा तो सब समझते हैं। ये नहीं हम कहेंगे कि बाबा हमारी भाषा नहीं समझते हैं। लेकिन साकार में जब आते हैं तो फिर हद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई आवाज नहीं करना है। हाँ, तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है ये कोई जानते नहीं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बाबा सभी भाषाओं में बोलेंगे, बोलेंगे एक ही भाषा में जो रथ की भाषा है, सब भाषाओं में नहीं बोलेंगे। नहीं, उनकी भाषा है ही क्या? हिंदी। इसीलिए देखो सिंध में शिव बाबा आए ब्रह्मा तन में, भले बाबा भी सिंधी थे और जो यज्ञ में समर्पित हुई वो सब सिंधी बहनी थी, जो भी समर्पित सिंध में रहते थे वही भाषा थी, लेकिन बाबा ने एक दिन भी सिंधी में नहीं बोला। बाबा की जो मुरली चली वो हिंदी में ही चली, क्योंकि बाबा जानते हैं ना कि भी आखिर भारत में ही रहना है, भारत की भाषा हिंदी है, तो इसीलिए हिंदी में ही सुनी। वहां तक कि कई सिंधी बहने थी, माताएं बहने, वो तो सिंधी बोलती थी, उनको हिंदी आती भी नहीं थी, है ना, हिंदी नहीं आती थी, तो सिंधी बोलती थी। तो बहने दूसरी उनको कहते हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, और कोई तो उनको चिढ़ाती भी थी, अगर सिंधी में बोलेंगे पापड़ बंद, क्योंकि सिंधी लोग पापड़ बहुत खाते थे ना, उस समय बहुत पापड़ खाते थे, अभी तो सब बंद कर दिया, लेकिन सिंधी में बोलेंगे पापड़ बंद। फिर इतनी हिंदी में बोलने लगे बहनें जो सिंधी भूल गई। अभी आपको बता रहे हैं कि यह कल ही समाचार आया, पाकिस्तान से बड़ा ग्रुप आ रहा है, आज आने वाला होगा, सिंधियों का ग्रुप सिंध से आए हैं, एक दिन के लिए वो आए हैं, वो आज आएंगे और मिलेंगे सबको, संस्था को देखेंगे, कोई संस्था से आए हैं, सिंध से आए हैं, वो तो सिंधी बोलने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान की भाषा क्या है ये कोई जानते ही नहीं, ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है हिंदी, बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो, फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है, बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो, कोई आए तो उनसे पूछो तुम किसके पास आए हो, बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, अब वो तो रचने वाला हो गया, ब्रह्मा है रचयिता तो वो तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं क्या कहा जाता है, ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वो तो लगा पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, वो तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते, भगवान निराकार कोई कहा जाता है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान है, तुम यहाँ किस लिए आए हो, फिर उनसे पूछो भाई यहाँ तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां रहती है जो ब्रह्मा की संतान है, तुम यहाँ किसके लिए आए हो, क्या हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम, हाँ तो हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम, ब्रह्मा तो हमारा बाप होके ना, हम आपके गुरु से मिलना चाहते हैं, हाँ बाबा से मिलना चाहते हैं, तो हमारा बाप है, तुम्हारा क्या काम हमारे बाप से, बाप से बच्चों का ही काम होगा ना, हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, तो गाया हुआ है सन शोज फादर, फिर हम क्या कहते हैं, नहीं ये ब्रह्मा केवल हमारा बाप ही नहीं है, तुम्हारा भी है, तुम भी सचमुच असल में तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, क्योंकि ब्रह्मा की संतान तो सारी दुनिया है, इसलिए तुम भी हो, तुम भी अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझो, तो कि हम कैसे समझेंगे, हाँ तो नहीं समझती हो तो समझो कि कैसे हम भी ब्रह्मा की संतान है, तो बाबा कहते हैं बाप के बच्चे का तो काम होगा ना, बाप से बच्चों का ही काम होगा ना, हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, गाया हुआ है सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं, तो ब्रह्मा को भी हम शोक का भी शोक करते हैं और शिव बाबा का भी शोक करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पुरुषोत्तम बनने के लिए क्या करना होगा, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो ईवी बातें हैं वो नहीं सुननी है, अगर कनिष्ठ बातें सुनेंगे तो पुरुषोत्तम कैसे बनेंगे, एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है, दूसरा नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, बुद्धि में रहे ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया है इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो, वरदान संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव, परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। अविनाशी प्राप्तियां होना ये परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सत्युगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और हजार कदम प्रारब्ध के पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है, इस स्वरूप को सदा सामने रखो। अभी भी श्रेष्ठ प्रारब्धी है, इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। बाबा इतनी प्राप्तियां हमें करा रहे हैं, ये नशा चढ़ते ही बाबा कहते चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो क्या होगा, पाना था सो पा लिया अब क्या काम बाकी रहा, ये गीत गाओ तो क्या होगा। बाबा कहते तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे, घुटका और झुटका खाने से बच जाएंगे जब नशे में है। स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान आसान हो जाता है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया, ब्रह्मा बाबा को देखा सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया शिव बाबा के साथ और कराया भी। इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइंड था, मैं आत्मा भी शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके, हमको शिव बाबा से कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई ताकत नहीं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो जैसे कि आप सभी को बताया कि हमारी अति आदरणीय दादी रतन मुनि जी ने 1:20 पर सवेरे अपना देह त्याग किया अहमदाबाद में जियोस हॉस्पिटल में। अब उनके पार्थिव देह को सारा दिन अंतिम दर्शनार्थ शांति वन के कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा जाएगा। अभी आ चुका होगा तो कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा जाएगा परसों सुबह। तो मानो आज का दिन कॉन्फ्रेंस हॉल में, कल परसों सुबह मुरली क्लास के बाद दादी जी के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाकी और भी विस्तृत समाचार समय प्रति समय आपको बताते रहेंगे। तो परसों संस्कार होगा, आज भी रखा जाएगा, फिर कल क्या है होगा वो भी बताएंगे आपको, फिर संस्कार तो परसों ही होगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और दादी जी के
कल ऊपर चार धाम जाएगा।
अच्छा, सॉरी। तो कल दादी जी के पार्थिव देह को माउंट आबू चार धाम की यात्रा के लिए लाया जाएगा। तो आज तो दिन भर रखा जाएगा, फिर कल यहाँ लाया जाएगा और फिर नीचे ले जाएंगे और परसों सुबह मुरली के बाद दादी जी के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाकी और विस्तृत समाचार आपको बाद में बताएंगे। ओम शांति।